आइए इन सारी बातों के बाद पारा शुरू करते हैं। सूरत बकरा की आयत 253 से 286 है, और इंशाल्लाह बीच बीच में जहाँ भी मौका आएगा हम अखलाक नबवी की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम वो बातें साथ रखेंगे जिससे हम आपको उसवे आलम समझ सकें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, और आज के इस पारे की नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रूप रखूंगी वो जिसमें आपने मैंने आपको उसवे आलम बनाना है, जिसमें हमने आपको एक रोल मॉडल बनाना है, वो क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत सखी और मेहरबान, क्योंकि इस बारे में सखावत की बातें हैं, खुले हाथों से खर्च करने की बातें हैं, और इनकी डिटेल्स इंशाल्लाह जो ही रमज़ान के हम करीब होंगे एक आध दिन हमारी एक अलग सीरीज़ ऑन एयर आएगी, आप लोग अभी से मुंतज़िर रहिए, वो अपने घरों से सुननी है, और उसमें हम हर रोज़ अपने प्यारे नबी का एक रूप देखेंगे और कहते रहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करती हूँ आयत नंबर 253 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। आपस की इख्तलाफी बातों में क्या रवैया अख्तियार किया जाए, इससे पारा शुरू होता है। फरमाया ये रसूल हैं जिनमें से हमने बास को बास पर फजीलत दी, और इनमें से बास वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बास के दर्जे बुलंद किए हैं, और हमने ईसा इब्ने मरियम को मोजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदुस से इनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई भड़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया, इनमें से बास तो मोमिन हुए और बास काफिर, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है ना दोस्ती और ना शिफात और काफिर ही जालिम है। नोट कीजिए आयत के अंदर लफ्ज़ क्या है, वल काफिरू नहुमुज़्ज़ालिमून, कुफर करने वाले ही जालिम हैं। असलाफ में से किसी का कौल है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया वल काफिरून हुमुज़्ज़ालिमून, ये नहीं फरमाया कि वज़्ज़ालिमून हुमुल काफिरून। क्या फर्क पड़ता आपको पता है? फिर हर जुल्म करने वाला काफिर हो जाता, और जुल्म कौन कहाँ करता है इसका अंदाज़ा बंदे को खुद नहीं होता। हमेशा अल्लाह से दुआ किया करे अल्लाह मुझे जालिमों में से ना करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं क़्यामत के दिन मज़लूम बन के आऊँ, मैं इसको गवारा करता हूँ, ये मैं कभी गवारा नहीं करूँगा कि क़्यामत के दिन मैं जालिम बन के आऊँ। तो जुल्म से बचने की ज़रूरत है। और इसके बाद फिर आयतुल कुर्सी नोट करिएगा, तर्जमा सुनने के दौरान 11 दलाइल हैं इसमें तौहीद के। तो लिखिए आयतुल कुर्सी में तौहीद के, अल्लाह ताला के वजूद के 11 दलाइल हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊंग आती है ना नींद, जिसकी मलकियत में ज़मीनों आसमान की तमाम चीज़ें हैं। मंजल्लसी, कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके सामने शिफात कर सके। वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। वसीअ कुर्सी यहुस समावाती वल अर्द, इसकी कुर्सी की वसत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है, और वो अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। आयतुल कुर्सी बंदे मोमिन की अकीदे का इजहार है। हर फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ना इंसान को मरने के फौरन बाद जन्नत में जाने की खुशखबरी दिलाता है। अल्लाह ताला ने इसमें अपनी तौहीद के ऐसे दलाइल दे दिए कि अब इसके बाद दीन में किसी जबर की कोई ज़रूरत नहीं रही। इसलिए आयत 256, ला इकराह फिद दीन, दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज़ और रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। क्यों दीन में ज़बरदस्ती नहीं? इसलिए कि ज़बरदस्ती तो उस मामले में की जाती है कि जिसमें कोई इख्तलाफ हो, छुपी हुई बातें हों, मुबहम हो। आप बच्चे को कहते हैं दूध पी लो, बच्चा कहता है क्यों पीऊँ, आप मजबूर करते हैं क्योंकि बच्चे को नहीं पता इसमें कैल्शियम है, इसमें बहुत कुछ है। तो अल्लाह ने चूंकि दीन को खोल के रख दिया, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद की सारी दलीलें और सब कुछ दे दिया। तो ज़रूरत नहीं कि हम किसी को फोर्स करें। तो आइए ज़रा इस पूरे हिस्से में से अमल की बातें नोट करते हैं। चूंकि इसमें पहले इख्तलाफी बातों में से बातें थी, तो क्या पता चला कि एक को दूसरे पर फजीलत नहीं देनी चाहिए बढ़ोतरी के अंदाज में, मजहब के नाम पे पैसे नहीं छेड़नी चाहिए, किसी दूसरे के मजहबी रहनुमा के बारे में बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, वरना अगले को आप इजाज़त दे रहे हैं कि वो आपके किसी मजहबी रहनुमा को बुरा भला कहे। फिर आगे चूंकि सदके की आयत थी, तो उस पे अमल की बात लिखी है कि आज आप जरूर कुछ सदका कीजिए, चाहे थोड़ा ही सही, इस नियत के साथ कि वो आपके लिए अल्लाह के पास उस दिन सिफारिश कर सके जिस दिन ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्त काम आएंगे, ना सिफारिश होगी। फिर अगला अमल क्या है कि फर्ज नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़िए, इससे आपके और जन्नत के दरमियान आपकी मौत के अलावा कोई हायल नहीं होगा। फिर तीसरी बार सुबह शाम और सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े, इससे अल्लाह ताला आपको शैतान से महफूज रखेगा। कुरानी रहनुमाई, झगड़े के असबाब में से वो इख्तलाफ भी है जिसकी बुनियाद ख्वाहिश नफ्स या जहालत हो, लिहाजा ख्वाहिश नफ्स को दबाना है और जहालत को इल्म के जरिए दूर करना है। क्यामत के दिन बंदे को नेक अमाल के सिवा कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने हैं जिनमें एक सदका है। फिर अगली बात, चूंकि इसमें अल्लाह ने फरमा दिया या अलमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, तो तन्हाई में और महफिल में चूंकि अल्लाह ताला आपकी निगरानी करता है, इसको हमेशा याद रखिए, अल्लाह इज वॉचिंग मी। आप कुछ छुपाएं या जाहिर करें वो सब जानता है। तो लिहाजा एक जुमला लिखिए, दूसरों को ना बताना, ये जुमला बोलना छोड़ दीजिए, बताने वाला खुद ही बता देता है जब आप कोई बात हद से बाहर जाकर करने लग जाते हैं। गौर व फिक्र के चंद पॉइंट्स, ये बात कि रसूलों के एक दूसरे पर फजीलत है, तो याद रखिए फजीलत मुख्तलिफ तरह की होती है। कभी इनके ऊपर नाजिल करदा किताबों के एतबार से होती है, कभी इनकी सच्चाई पर दलालत करने वाली निशानी और मोजज़ात से होती है, कभी शरीयतों और कभी इनके लाए हुए इल्म और अमल की वजह से होती है, और कभी कभी उम्मतियों की कसरत की वजह से होती है। ये इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का कौल है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हर एक की इज्जत करनी है। और फिर उसके बाद ये बात के बल काफिरू न हुमु जालिमून, तो जुल्म से बचना है। फिर अल्लाह ताला ने चूंकि अपनी जात से नींद को अलग किया, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तो नींद एक नक्स और खामी है, बंदों की ज़रूरत है अल्लाह की कमज़ोरी नहीं, लिहाजा बहुत ज़्यादा सोने से बचना है। आज इस आयत पे अमल का एक नया अंदाज सीखिए। अल्लाह के साथ तो कोई तकाबुल नहीं, ना वो थकता है ना उसको तुकताहट है, लेकिन आप मैं ये सोच के कि अल्लाह नहीं सोता, तो थोड़ा सा अपनी नींद पे काबू पाकर अल्लाह के दीन का कोई काम करें। दिन रात में से अपने सोने के औकात में थोड़ी सी कमी करें और उस वक्त में अल्लाह के दीन का काम करें जो आपको इस वक्त इल्म लेना भी है। खास तौर पे नींद को कम कीजिए, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा करें उतनी बढ़ती जाती है। और इसी तरह से आप देखिए कि आपका होमवर्क है कि इसमें से 10 जुमले निकालिए जो अल्लाह ताला की तौहीद के मुताबिक हों, बल्कि बाज़ तो कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की 25 खूबियाँ हैं और बहुत कुछ है इसके ऊपर, इसके अलग से तफसीर भी है, वो सुन सकते हैं आप लोग। और फिर मनजल्लसी यशफ़ इंदहू की बात के ऊपर अपने लिए गौर का नुक्ता लिखिए कि क्या मैं अल्लाह ताला की अजमत, जलाल और किबरियाई को महसूस करती हूँ? कल क़यामत के दिन मेरे दिल का क्या हाल होगा? फिर अगली बात, तागूत का इनकार। याद रखिए हमारे कलमे का पहला लफ्ज़ क्या है? ला। फिर इलाहा इल्लल्लाह। ला की तलवार से सारे तागूतों का सर काट दो, फिर अल्लाह की ज़ात समझ आती है। ये कलमा ऐसे भी हो सकता था, इलाहुन अल्लाह। तो आपके मेरे लिए अमल की बात है कि अपने तागूत ढूंढें। हमारा नफ्स भी तागूत है, मुआशरा भी तागूत है, रस्म व रिवाज भी तागूत है। फिर इसी तरह से आप तागूतों में छोटे तागूत बड़े तागूत भी हैं, इसीलिए अब अगली आयतों में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कुछ तागूतों की बात की है। और इसके बाद आगे अगर आप लेके चलूँ आपको, तो आपके मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि आपको जितना तौहीद का यकीन आता जाएगा ना, उतने आपके अंदर के अंधेरे दूर होते जाएंगे। तो ये ज़रा अगला हिस्सा पढ़ते हैं और उसमें से भी फिर अमल की बातें लेंगे। और वो क्या है, आयत 257, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूर। फेवरेट मोस्ट आयते हैं, यकीन करें दिल से सुनने वाली आयते हैं, सर के कानों से नहीं, रूह के कानों से सुनिए। और एक एक मौके पे दुआ करें कि अल्लाह तो हमारा वली बन जा। ईमान लाने वालों का वली और कारसाज़ खुद अल्लाह है। अल्लाह तुम्हारे सारे काम अपने हाथ में ले ले, अल्लाह तुम्हारे सारे काम संवार दे। वो अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये जिद पे आ गए। यहाँ से आप डीलिंग सीखिए। हर नबी के तरीक़े तबलीग में हमें ये बात दिखती है कि उन्होंने अपने वक्त के मुखालिफिन और अपने और दीन के दुश्मनों से एक मामला कैसे किया। और इससे फिर दीन की हिकमत भी मांगी है कि अल्लाह हमें लोगों से बात करना, दावा करना, उसकी हिकमतें भी सिखा दे। तो जब उसने जिद पे बात कर दी कि मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, बाज़ कहते हैं कि एक कैदी को निकाल कर उसने आज़ाद कर दिया और बेगुनाह को पकड़ के मार दिया, कहा देखो मैंने भी जिंदा कर दिया, मैं भी मारने पे कादिर हूँ। तो उस पे फिर हज़रत इब्राहिम ने साइड चेंज की कि नहीं, ये बात समझ नहीं आ रही, चलो देखते हैं। क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तो इसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर हैरान रह गया। और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल जिहाद। अक्ल सोच के मुताबिक आप जिस बंदे के साथ बात कर रहे हैं पहले उसके माइंडसेट को तो समझिए। आज हमारे यहाँ तबलीग और दावा के अंदाज में इसकी इजाफे की ज़रूरत है। हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसको जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे किस मुल्क में बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, किन हालात में बैठे हैं। जो बंदा है वो बेचारा गुनाह की किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, और एक लाठी से सबको हांकते हैं। तो ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहिम का जो अंदाज़ था ना तबलीग का, ये पढ़े लिखे और बड़े इलीट किस्म के लोगों को तबलीग करने वाला था कि अगले के ऊपर आप अपनी मरूबियत दीजिए। आज भी आप इस दीन की बड़ाई के लिए, मरूब करने के लिए खूब अच्छे क्लासरूम बनाइए, उनको अच्छे तरीके से डील करें, स्क्रीन्स लगाइए, स्लाइड्स बनाइए, आप अपना गेटअप अच्छा रखिए। अब यहाँ तो हम एक आम क्लासरूम में बैठे हुए हैं ना, सिर्फ एक अपनी सहूलत के मुताबिक अपने आप को ईजी रिलैक्सेशन में लेते हैं। लेकिन अगर यही बात की किसी एक बड़े लीड क्लास में दर्स देनी हो, मैं सबसे पहले अच्छे कपड़े पहनती हूँ। और जो मेरे साथ हैं वो जानते हैं कि दर्स जो बाहर के आउटसाइड के और जहाँ जहाँ, वही वक्त सिर्फ मेरे लिए 1-2 घंटे का अपने आप को खूब साफ सुथरा करके इस लेवल पे लाने का, उसमें कोई मकसद अपनी जात नहीं होता, मेरी बला से मुझे क्या, लेकिन दीन की इज्जत। क्यों? कि जो आए बैठे हैं वो जब आपको अपने जैसा देखते कहते हैं अच्छा ये भी कोई बंदा ही है, चलो सुन लेते हैं। और अगर आप वहां उनके लेवल से नीचे आके बैठे होंगे ना, तो वो तो अपना दिमाग ही नहीं खोलेंगे। आपने नहीं देखा होगा, मैंने ऐसे बीसियों क्या सैकड़ों लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, तो ये इंटेलेक्चुअल जिहाद होता है। इसको करने के लिए आप अम्बिया कराम की दावत को खूब सीखने की ज़रूरत है। अब अगला वाक्य जो है ये हज़रत उज़ैर से मुतल्लिक है। यह उस शख्स की मानिंद के जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर इसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुम पर गुजरी, कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा, फिर अब तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तू देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। क्या पता चला कि उसके अंदर एक शक आया था, अल्लाह ताला ने उसके शक के अंधेरे दूर कर दिए। तो क्या बातें हैं इसमें अमल की? पहली बात यह है कि चूंकि अल्लाह के वली होने की बात है, तो अल्लाह तला के पसंदीदा दो या तीन काम ढूंढिए और उन पर अमल की कोशिश कीजिए, और ये दुआ मांगिए अल्लाहुम्मा तवल्लनी फी मन तवल्लैत, ए अल्लाह मुझे भी इन लोगों में शामिल कर ले जिनका तुम वली और मददगार बन जाता है। फिर इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से से बहस और मनाजरे के तीन आदाब की निशानदेही कीजिए। तीसरी बात दुआ, आप सब भी मेरे साथ मांगना चाहें तो मांग लीजिए, अल्लाहुम्मा या मुअल्लिमा इब्राहीमा अल्लिमनी व या मुफहिमा सुलेमाना फहिमनी, ए अल्लाह ए इब्राहिम को इल्म देने वाले मुझे भी इल्म दे, और ए सुलेमान को मसाइल की समझ देने वाले मुझे भी समझ दे। इस दुआ को याद कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए बेइल्म के दरवाजे खोल देगा। कुरानी रहनुमाई लेते हैं, ईमान और अमल साले से आपका वली और सरपरस्त अल्लाह ताला बनेगा, जबकि फिस्को फजूर और जिक्र इलाही से गफलत का नतीजा शैतान आपका वली बनेगा अल्लाह की बना। तो ज़्यादा अच्छे काम करने हैं ताकि अल्लाह की दोस्ती मिले, और गुनाह के कामों से रुकना ताकि शैतान की दोस्तियों से हम निकल जाएं। फिर अल्लाह की अपने नेक बंदों पर एक बहुत बड़ी नेमत है कि वो अल्लाह की बुरहान से देखते हैं। हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो, इत्तकु फरासतुल मोमिन, क्योंकि वो अल्लाह के नूर अल्लाह की बुरहान से देखता है। फिर दुनियावी नेमतों के साथ अगर अल्लाह पर ईमान शामिल ना हो तो ये नेमतें आदमी पर वबाल और इसके गुनाहों में इजाफे का सबब बन जाती हैं। गौर व फिक्र की चंद बातें नोट कीजिएगा। अल्लाह वली है ईमान वालों का, इसलिए उनको अंधेरों से रोशनियों में डालता है। इससे मुराद क्या है? अल्लाह उनके मामलात का जिम्मा ले लेता है, अल्लाह मेरे आपके सारे मामलात का जिम्मा ले ले। दूसरी बात, इन्हें अपने अलावा किसी के हवाले नहीं करता। मैं तो अपने लिए दुआ ही ये मांगूंगी और आपके लिए भी जो मेरे साथ बैठे हैं और जो वाइड से सुन रहे हैं अच्छे ख्यालात के साथ, और वो क्या है कि अल्लाह आपको अपने सिवा किसी के हवाले ना करे। आपको पता है ताइफ के मैदान में अल्लाह के नबी को जो तकलीफें पहुंची तो आपने उसमें क्या बात कही थी? इला मन तकीलो नहीं, अल्लाह तो मुझे किसके सबूत कर रहा है, इला वही दिन, किसी बेगाने के, गैर के या दुश्मन के। यानी ये एहसास बंदे को सरशार कर देता है कि मेरा मामला मेरे रब के साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसी तरह तीसरी इसकी तफसीर, ये सारे बड़े बड़े सलफ़ है, मैं नाम नहीं लेती ताकि बात बोझल ना हो, लेकिन ये जितने भी मैं आपको अभी बोल रही हूँ ये सलफ़ सालेहीन के इस आयत को समझने के मुख्तलिफ नुक्ते हैं। एक और जैसे हसन है, वो कहते हैं कि इससे मुराद है कि इनकी हिदायत का वाली और जिम्मेदार बन जाता है। दुआ करती हूँ अल्लाह आपकी और मेरी औलादों हमारी नस्लों की हिदायत का वाली बन जाए। और इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इसमें लफ्ज़ नूर को वाहिद रखा और जुलुमात को जमा रखा, इससे पता चलता है हक एक ही है, और कुफर की और शिर्क की बहुत सी शक्लें और किस्में, और वो सारी की सारी बातिल हैं। जितना ज़्यादा हक पे जमते जाएंगे आपके दिल में सुकून भी होगा। फिर अगली बात देखिए कि अल्लाह ताला चूँकि मोमिनों का वली है तो उनको कैसे अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है, कुफर से, नाफरमानियों से और जहालत के अंधेरों से निकालता है, और तीन चीज़ें देता है, ईमान, इताअत और इल्म। और अगर मेरी जल्दी में बोली हुई बात आप नहीं कैच कर सके ना, तो कुफर से निकाल कर ईमान में डाल देता है, नाफरमानियों से निकाल कर इताअत दे देता है, और जहालत से निकाल कर इल्म के उजालों में पहुँचाता है आप सब नए आने वालों को, मुबारक हो जो पहली दफ़ा दौरे कुरान सुन रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कितनी रोशनी आती जाएगी, कितनी आती रहेगी, और फिर आप देखेंगे कि एकदम आप उजले हो जाएंगे। और फिर इसके बदले में क्या करता है, कब्र, हश्र और कियामत के अंधेरों से बचाकर दायमी नेमत और राहत, कुशादगी और लुत्फ व सुरूर में पहुंचा देता है। ये तफसीर सादी में इसकी तफसीर है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं एज इट इज सुनाना चाहती हूँ ताकि आप उसको इंजॉय करें। यानी सिर्फ एक आयत में, दो जुमलों में आपको वो मिल गया है जो शायद आधा घंटा भी कोई बात करके ना समझा सके। तो अल्लाह के इस कुरान के साथ रहिए, इंशाल्लाह खैर ही खैर आएगी। फिर कुफर को जुलुमात यानी अंधेरा कहा गया है, क्यों? इसलिए कि इसका रास्ता गैर वाजे होता है, एम्बिगिटी होती। काफिर जब मुशरिक जिससे भी बात की, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आई डोंट नो, व्हाट विल बी गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ, आई डोंट नो, वी डोंट नो। यानी जब हम दावा करते हैं ना रस्तों में नॉन मुस्लिम लोगों से, तो उनसे पूछे ना तुम क्या सोचते हो मरने के बाद क्या होगा, 90% लोग कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, नॉट क्लियर। कुफर अंधेरा है क्योंकि ये गैर क्लियर है। जैसे रात बिजली बंद कर दें तो सड़क भी नहीं नजर आती। और इस्लाम को नूर यानी रोशनी कहा गया क्योंकि इसका रास्ता बिल्कुल साफ और वाज है, लैलुहा का नहारिहा। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाता है, तो इससे मुराद है कि हिदायत याफ्ता लोगों की हिदायत में इजाफा होता है, फिर वो इस्लाम पे अमल करने लगते हैं, फिर उनके लिए यकीन के रास्ते हमवार और आसान हो जाते हैं, और दिन ब दिन वो इन रास्तों पर चलते हैं जो जन्नत की तरफ जाने वाले हों। इसके बरक्स इस्लाम के मुकाबले जो कुफर वाले लोग हैं उनकी अक्लों पर मोहर लगा दी जाती है, वो हिदायत से महरूम रह जाते हैं और दिन ब दिन गुमराही में बढ़ते जाते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे लोगों में ना शामिल करे। और बिलाखिर फिर वो शख्स जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया था, तो इससे भी नुकता नोट कीजिएगा, आपसे मुझसे भी लोग बहसें करेंगे। हमारा काम ये है कि बेहतरीन तरीके से उनकी बात को सुने और उसका वो जवाब दें जितना देने की ज़रूरत है। आइए पढ़ते हैं हज़रत इब्राहिम का एक और वाक़या, 260 से 264। वइस काला इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे परवरदिगार तू मुझे दिखा कि मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, जनाबे बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया चार परिंदे लो, इनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब और हिकमतों वाला है। कल कब्रों से निकलते हुए जो मामला होना है ना, अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसका तजुर्बा दुनिया में करा दिया। सूर की आवाज़ के साथ कब्रें फटती जाएंगी, मखलूक निकल कर भागेगी अल्लाह की तरफ। और इधर से ये भी सोचिए कि आज एक बंदा पुकार रहा है तो परिंदे उड़कर आ रहे हैं, जब खालिक पुकारेगा तो सारी दुनिया कैसे उठकर मैदाने हशर की तरफ ना आ जाएगी। फिर आगे कुछ माल खर्च करने की बातें हैं, आखिरत के साथ ही माल खर्च करने की बात क्यों आ गई? क्योंकि जब बंदे को अल्लाह से मिलने की उम्मीद होती है तो वो जब दे रहा होता है ना, तो ये नहीं कहता कि ये चट्टी पड़ रही है, बल्कि वो कहता है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट में और कर्ज में और खर्च में बहुत फ़र्क है। कारोबारी लोग सारा कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, कई दफ़ा घर में खाना लेके जाने के पैसे नहीं रहते, किस उम्मीद पे कि आज दो लगा रहा हूँ कल तीन लेके आऊँगा। तो इसी सोच को सामने रख के अब तकरीबन दो तीन रुकू जो हैं ये खर्च से मुतल्लिक हैं, जिसमें आयत नंबर 262 पहले आ रही है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हों। अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर इसके बाद ना तो एहसान जतलाते हैं ना ईज़ा देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना तो कुछ खौफ है ना वो उदास होंगे। मसलुल्लज़ीन युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, इसके साथ ही कई ख्वाब याद आ जाते हैं और मंजर जहन में क्या आता है, खेती है और उसमें फसल लगी हुई है। तो याद रखिए अल्लाह के रास्ते में देना इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहलाता है। लफ्ज़ अलिफ लगा दें तो इन्फाक और हटा दें तो निफाक, निफाक वाले दिल से इन्फाक नहीं होता, ना वक्त का, ना माल का, ना पैसे का, ना स्किल्स का, ना ख्वाहिशात का। और खर्च की चार मुमकिन सूरतें जो इसे आगे हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली सूरत है ये जो बेहतरीन है, दो शरायत है, ना एहसान जितलाया जाए और ना देने के बाद ईजा दी जाए। और फिर आगे एक जुमला पहले लिखिए, फिर तर्जमा सुनिए। माल का सदका करने से पहले जुबान का सदका कर दो। कैसे? कौलम मारूफ, नरम बात कहना और माफ कर देना इस सदके से बेहतर है, जिसके बाद तकलीफ दी जाए। और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जतला कर और ईजा पहुंचा कर बर्बाद न करो, जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और न अल्लाह ताला पर ईमान रखे और न कियामत पर। इसकी मिसाल उस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर इस पर जोरदार मी बरसा जाए और वो इसको बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ नहीं लगती, और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे, असल बादशाह ही है। तो लिखिए आयात पे अमल। आज ऐसा सदका दीजिए जिसको कोई इंसान ना जान सके, सबसे छोटी एक कोई चीज आज यहां से उठने के बाद घर जाकर जब भी पैसे हाथ में दे दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। क्यों? यहां से आदत पड़ेगी कि जो सुन रही हूँ उस पे अमल करूंगी और फिर बताना किसी को नहीं। आज ये भी एक मसला हो गया सोशल मीडिया के आम होने पे, लोग उमरा करके आते हैं, तस्वीरें शो कर देते हैं, सदका खैरात हो रहा है तो उसकी तस्वीरें शो करते हैं। मुझे किसी ने कल एक वीडियो भेजी, अभी 15 शाबान गुजरी है तो उससे मुतल्लिक थी। अल्लाह जाने दुनिया की कौन सी जगह है, पूरा शादी हॉल है, जैसे पार्टी हाउसेस होते हैं, उसके अंदर पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है। मैं अभी तक नहीं जान सकी कि वो डमी उन्होंने कब्रें बनाई या कब्रिस्तान को जाके सजाया हुआ था। और 15 शाबान पे पूरी पार्टी हो रही है कब्रिस्तान के नाम पे। और जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अब मुझे खौफ है कि आने वाले दिनों में मरने वाले के भी फोटो सेशंस होंगे और उनकी कब्रों के ऊपर ये सारी आराइश और सिबाइश होगी ताकि अगले साल फिर उनको बनाया जा सके। फारिक कौम यही करेगी, इल्म को हासिल करें, अपनी जात पे खर्च करें, टैक्सी लगवा लें, गाड़ी लगवा लें, अपनी दोस्तों को बुला लें, किताबें ले लें, कुछ भी कर लें, ये सारा पैसा आपका सदके में जाएगा। हम कहते हैं सदका वो काला बकरा काट के तो किसी को खिला दें, लेकिन जो आपका अपनी जात पे खर्च आता है ना, वो भी सदका होता है। क्योंकि आज इस अंधेरे को दूर करने के लिए इल्म पे खर्च करना है। दूसरों को दावत दीजिए, दूसरों को बुलाइए किस सोच से, क्या हो, लोगों को इंटरनेट दिलवा दीजिए, उनको जाकर यूट्यूब पे साइन अप करवा दीजिए, उनको जाकर पे चैनल को सब्सक्राइब करा दें, कहीं कुछ कि आप घर बैठ के सुन लें। पता चला हजारों लाखों लोग सुनते हैं। और जब लोग कहते हैं मैं फलां के जरिए, कल हम कहीं थे तो एक सिस्टर ने मिलवाया, सर मुझे भी ये शौक होता है सुनने का कि आपको कैसे पता चला नूरुल कुरान का या सबीलुल जन्ना का, तो उन्होंने एक दूसरे दूर के मुल्क का नाम लिया, गालिबन साउथ अफ्रीका या क्या नाम था, कि वहाँ की एक सिस्टर। तो मैंने कहा वहाँ की उर्दू बोलने वाला है, एक दो सिस्टर्स को मैं जानती हूँ। तो इन्होंने बाद में उनसे बात कराई मेरी, मैंने उनको यही कहा आपको नहीं पता आप कब तक किस मुल्क में हैं, यहाँ कोई बीच डाले हैं, कोई उर्दू बोलने वाले तो ये उर्दू की चीज़ है कोई इंग्लिश वाला तो उसको डाल दें, आपका मेरा काम ये अपने हिस्से के बीच डालते जाए और आगे जाए। मैं आपके पास बीज डालने आई हूँ, फसल आप लोगों ने बनना है, आपने काटनी, आपने बीजनी। हर जगह का बीज उसी जगह के लोग टेक केयर करते हैं, तो हर साल का दौरे कुरान उस जगह के लिए हुज्जत भी होता है, उसके हक में भी और उसके खिलाफ भी होता है। जिस जगह की मट्टी नरम होती है, जरखेज होती है, वहां देखिए कैसे खेतियां उग जाती हैं। तो ये कोई जरूरत नहीं होती बड़ी कि कौन इस वक्त आपके तरह मेरी बात सुन रहा है, असल बात है कि इसके बाद कौन इस चीज पे जमता है। तो अपने लिए ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे काम करवा ले कोई। फिर अगला अमल का नुक्ता लिखिए कि कोई ऐसी आयत आपने भी कुरान से ढूंढनी है जो सदके पे उभारने वाली हो, और उसको पढ़कर गौर कीजिए कि उसके बाद कौन से अल्लाह की सिफात आ रही हैं। हैरान हो जाएंगे आप, वासियुन अलीम, वासियुन अलीम की सिफत आ रही है इधर, क्या राज है। युदाइफ लिमन यशा वल्लाहु वासियुन अलीम, इससे ये पता चलता है कि वुस्सत कल्बी हो और इल्म हो, इस चीज पे अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत आती है। अगला अमल का नुक्ता लिखिए कि आज किसी मुहताज से मुलाकात कीजिए, उससे अच्छी बातें कीजिए, उसे दुआ दीजिए, इसके सामने मुस्कुराइए और उस पर सदका कीजिए ताकि आपके अजर में मजीद इजाफा हो। हम सदका दे भी देते हैं ना मासी को बेचारी को या किसी को, अच्छा अच्छा ठीक है ले लो ले लो, वहां रखे ले लो, वो आके जरा शुक्रिया करना चाहे, बस बस हो गया हो गया, रहूनत है, अकड़ है हमारे अंदर, तकबर है। तो वो ही बात याद रखिए, तकबर जब आए तो तकबीर कहिए, अल्लाह अकबर इन्नी असगर। आगे कुरानी रहनुमाई लीजिए। अगर सदका मोहब्बत और तवाज़ो के साथ दिया जाए, लेने वाले पर एहसान जताया जाए, ना उसे तकलीफ दी जाए, तो ये सदका दुनिया और आखिरत में इसी तरह सदका देने वाले को हर तरह के गम और डर और खौफ से महफूज रखता है, जैसे ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदका जो है ना, गुस्से की आग को बुझाता है, अल्लाह के गज़ब की आग को बुझाता है, आपके दिल के बोझ को दूर करता है। कभी बिला वजह डिप्रेस हो ना, तो पढ़ लें, कुछ सदका दे दें। और फिर याद रखें, सदके के लिए माल ज़रूरी नहीं, घर में रोटी रखी हुई है दे दें, एक बिस्किट दे दीजिए, पानी की बोतल दे दीजिए, कुछ खिला दीजिए, कुछ कर दें। फिर अगली चीज़ नोट करें, भली बात कहना और लोगों को माफ़ करना उस सदके से बेहतर है जिसमें लेने वाले को तकलीफ़ दी जाए और एहसान जतलाया जाए। इसलिए कभी कभी सिर्फ अच्छी बातों के सदके करें। घर में खिदमतगार आती, क्या हाल है आपका खाला, चाय बनाऊँ आपके लिए, हल आए मैं आपके पाँव दबाऊँ, आपकी नीयत क्या हो? कौलम मारूफ। अपने बड़ों और अपने जैसों के साथ हम बहुत कुछ करते हैं, दबे हुए लोगों को मोहब्बत दीजिए, क्या हाल है आपका, ओ ठीक हो। आप देखिए, जैसे तारीफ की बात नहीं है, सच्चाई की बात है, आपके सर जो है ना, ड्राइवरों, माली बाबाओं और गार्डमैन और जो उनके फेवरेट हैं। वजह क्या है? क्योंकि हम हर वक्त ही सफर में होते हैं ना, कहेंगे वजह ये कि वो लोग कहते हैं कि जिस तरह ये हमें मिलाते, बात करते, ये करते, कोई नहीं करता। शादी में गए हैं तो पहले उसको कहते तुम अंदर चलो फिर मैं जाऊंगा, हम किस सकड़ में बैठे, तुम बाहर बैठो। 4-4 घंटे हमारे ड्राइवर बाहर भूखे होते हैं, हम अंदर 20 चीजें खा के निकलते हैं, और वो बेचारे गरीब घर जाके पता नहीं क्या खाते होंगे। कभी ना करें, अंदर जाते हैं ना फौरन कहा करें, मेरी भी आदत है, अगर किसी ऐसी जगह जाए तो उन्हें कहती भाई ड्राइवर है आप उसको कुछ भेज दीजिएगा, हमारे लिए तो आपने दस्तरखान लगाने हैं, तो उन गरीबों का ये है कौलु मारो। और ये सिर्फ वो करेगा जो अंदर से डाउन टू अर्थ होगा, छोटा होगा। कोई गरीब कुछ पेश करे तो ले लीजिए, कोई होता है ना खाए बाद में खा ले, दिल नहीं चाह रहा पकड़ लीजिए, नहीं नहीं तुम खाओ अपने बच्चों को खिलाओ, नहीं नहीं मैं नहीं तुम्हारे से लूंगी, साग बना के ले आई, कोई दाल बना दी, नहीं 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 तुम्हारे तो अपने घर में कुछ नहीं, तुम खाओ, नहीं भाई ले लो, उसको 100 रुपये दे दीजिएगा बाद में। अच्छा जाओ तुम अपने बच्चों को चाय पिला दो, खाना खिला दो। तो बात का खुलासा समझ रहे हैं, अच्छी बात है, कर अंदर आजी लाइए, यह आपकी नरमी ने लोगों को आपसे और दिल से जोड़ना है। क्योंकि हम जुबान की सख्ती के साथ इतना प्यारा दीन भी देंगे ना, तो आप देख लिए हमारे अपने बच्चे दूर हो रहे हैं, दूसरों की क्या बात करें। फिर इसी तरह रियाकारी से बचना है, रियाकारी असल में लोगों से तलब करना है और अल्लाह से मायूस होना है। गौर व फिक्र की चंद बातें लीजिए कि वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा की जो बात है, इससे पता चलता है कि खर्च, इखलास, सच्चाई और हालात के मुताबिक क्या मौका था उसके मुताबिक मल्टीप्लाई होता है। जहाँ देने से ज़रूरत पूरी हो, जहाँ अर्जेंसी हो, जहाँ देने के बाद आपका वो बड़े, आपको मैं एक लुकमा दूँ और आप ना खाएं, मैं अगली दफ़ा कभी भी ना आपको दूंगी। आप $1 देते हैं हमें और हम आपको वो डॉलर ज़ाया करते हैं, आप हमें कभी ना दें। अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल्कुरान ने कभी कॉल नहीं दी कि आप हमें कोई डोनेशन दें या करें, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डाले होते हैं, जो खुद अपनी खुशी दिल के इस बात से उसमें डाल दे तो डाल दे, हम लोग कभी नहीं मांगते। क्यों? हम मांगेंगे तो मांगते होंगे और लोग बोल रहे दिल से देंगे कि क्या मुसीबत, अब जान छोड़ा, बरकत ही नहीं होगी। तो आप हमेशा अल्लाह से दुआ किया करें कि मेरा दिया हुआ वो उस औरत की तरह के, वो जो रात के अंधेरे में एक मर्द दे गया, एक दिन जानिया को दे गया, एक दिन चोर को दे गया, तो उन्होंने उनको बुराई से रोक दिया, चोरी से रोक दिया, हमारा दिया हुआ किसी गुनाहगार को नेकी पे ले आए, और इसी तरह की बाकी बातें हैं। फिर इसी तरह से मरने के बाद दोबारा जीने का भी इन आयतों से हमें पैगाम मिल गया। और इसी तरह से जो किसी को दे कर उससे एहसान मांगता है ना, वो असल में उसको अपना बंदा बनाना चाहता है। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, तुम अल्लाह के बंदे बनो। और फिर कौलम मारूफ के बाद अगला लफ्ज देखिए, मग़फ़िरा था इसमें, बख्शिश। और वो क्या है कि कभी साहिल तुमसे कोई बदतमीजी कर देता है, कोई आगे से बुरी बात कह देता है, तो उसको माफ कर दो, खूबसूरती से जवाब दे दो। आखिर में देखिए, वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह हलीम है, बुर्दबार है। जब वो तुम्हारी इतनी बातों के ऊपर दरगुजर करता है, तो तुम फिर उसके बंदों के साथ नरम क्यों नहीं होते? और आखिरी बात क्या है कि अपनी नेकियों को जाया ना करो। नेकियों की खेती बड़ी मुश्किल से लगती है, और अगर खुद ही लेकर उसको छुरी से और कैंची से काट दें तो क्या फ़ायदा होगा? इसलिए जहाँ नेकियों का शौक़ है, वहाँ अपनी बुराइयों, कमियों और अपनी बदअखलाकियों और ऐसी चीज़ों पे भी नज़र रखिए कि कल क़यामत के दिन पता चला कि आपकी नेकियाँ, बुराइयाँ आपकी गीबतों की वजह से चली गई, हदीस है क़यामत के दिन गीबतों की वजह से नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपसे मुझसे बेहतरीन तरीके से नेकियां भी करवाए और इन नेकियों की हिफाजत भी करवाए। आगे चलते हैं आयत 265 से 269। वमसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम इब्तिगा मरदातिल्लाह, इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं। दुआ करें हमें भी ये मिल जाए। इस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश हो और जोरदार बारिश इस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लाए, और अगर इस पर बारिश ना भी पड़े तो फुहार ही काफी है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। क्या तुम में से कोई ये भी चाहता है कि इसका खजूर और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों, इस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, इसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, इनमें से बुरी चीज़ के खर्च करने का कसद ना करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह खूबियों वाला है। अश्शैतानु यअदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है, वो जिसे चाहता है हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और दानाई दिया गया वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। खूबसूरत सी आयतें। चलिए आयात पे अमल। सबसे पहले एक दुआ मांगिए और सीखिए, मसनून दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका सबात फिल अमरी वल अजीमत अलर रुश्दी वल गनीमत मिन कुल्ली बिर। ए अल्लाह, मैं तुझसे दीन पर साबित कदमी, हिदायत पर पुख्तगी और हर नेकी से फ़ायदा उठाने की तौफीक मांगता हूँ, क्योंकि आयत में क्या आया, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। अगली बात अमल की, ऐसे सदके का ख्याल कीजिए जिसे देने में आपको तरद्दुद हो। कभी नहीं दिल कर रहा होता, देना ही पड़ जाता है, सोचिए उसको। शैतान था जो आपको अंदर से रोक रहा था, ना दो ना दो ना दो ना दो। अब आप क्या कीजिए, दोबारा किसी ऐसे जगह पे सदका दीजिए और शैतान को घूरिए, बोलो अब करो क्या करते हो, यानी अपने शैतान के साथ मुकाबला कीजिए और सदका दीजिए। और फिर अगली बार जो बड़ी प्यारी है, मैं अपने लिए भी करती हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको हिकमत दे, क्योंकि यू तिल हिकमत में यशा। आज दीन का इल्म है, हिकमत नहीं है, हिफ्स है, हिकमत नहीं है, तजवीद अच्छी है, हिकमत नहीं है, ग्रामर फरफर आती है, हिकमत नहीं। एक मेहमान को डील करने का तरीका नहीं आता, अपने घर को सलीके से रखने का तरीका नहीं आता, बच्चे से कैसे ऐसे वक्त में बात करनी, हिकमत नहीं आती, शोहर के इस मिजाज को देख कर क्या बात करने की जरूरत है, हिकमत नहीं आती। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आगे देखिए कुरानी रहनुमाई। अपनी बातें मिसाल देकर समझाया कीजिए, इस तरह लोगों की समझ में बात आसानी से आती है। ये तदब्बुर वाला अमल के जो राइटर है उनका मशवरा है आपको। ये जो मिसालें दी जाती है ना बीच में अपनी, हर एक देता है, देनी चाहिए। उसका मकसद है कि लोग आपको बड़ा बनाएं? नहीं, उसका मतलब यह है कि लोगों की ये बात हो सकती है, ये पॉसिबल बातें करते हैं, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं करते। फिर इसी तरह सदका करने का हुक्म देने में इम्तिहान क्या है, कि आप अच्छी चीज़ का सदका देते हैं या बुरी का। तो आज के बाद जब भी कभी किसी को भी सदके की, सदके से मुराद ये कि नेकी की नीयत, इससे खास वो नहीं मुराद हमारे इंडिया पाकिस्तान का सदका है, कुल्लू मारूफ इन सदका, तो ज़रूर उस वक्त नीयत चेक किया करें कि मैं सेबों में से भी गला हुआ सेब तो नहीं निकाल रही मेट के लिए, सारे केलों में सबसे छोटा केला निकाल रही, नोट भी लोग निकालते थे पुराना निकाल के देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना इंशाल्लाह। इसी तरह से ये जो बात हुई है ना कि अश्शैतानु यअदुकुमुल फ़क्र, तो यहाँ एक जुमला बड़ा बड़ा लिखिए, ये जैम है, मुख्ताजगी का डर दरअसल शैतानी वसवसा है, ये शैतान दिल में डाल रहा होता है, ना करो कमज़ोर हो जाओगे, अभी बच्चों की शादियाँ करनी है, अभी ये करना वो करना, और आपको नेकी के काम से पीछे हटा देता है। गौर व फिक्र की चंद बातें आप देखिए, कि जो शख्स माल जो आदि रूह है इसे खर्च करने पर अपने नफ्स को राजी कर ले और नफ्स झुककर इसका ताबेदार बन जाए। ख्वाहिशात और शहवात की पैरवी करने की इसकी चाहत कम हो जाएगी। यानी आप अपनी ख्वाहिश लस्ट को कम करना चाहते हैं ना, तो माल खर्च कीजिए। जो ही देंगे ना, आपका नफ्स दबेगा, आप उसको डांटेंगे, चुप 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 चुप, मैं दूंगी, तो एक वक्त आएगा आपका नफ्स फिर दब जाएगा। ये ऐसे ही समझिए जैसे अपने घर के बच्चे के सामने आप उसकी कोई चीज देने लगे तो चीखने नहीं लगता, ये क्यों दे रहे हैं? फिर उसको समझ, बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, आंटी है उनका बेटा, उनको दे रही हूँ। तो बच्चे को कंट्रोल आएगा ना बाद में, आपको समझाएंगे बेटा शेयर करते हैं। तो नफ्स भी एक बच्चा होता है। नफ्स के बच्चे को दबाने के लिए सदका खैरात दीजिए, ताकि आपका नफ्स जो है वो आपसे दबे, और फिर अपने नफ्स को इबादत के लिए तैयार कीजिए, ताकि फिर वो आगे से आगे मजीद बढ़ते हुए और से और नेकियां करने लग जाए। फिर उसके बाद याद रखिए कि जो यहाँ एक चीज आई है, रियाकारी, जो लोगों को दिखाने का शौक होता है ना, उसका इलाज क्या है? इब्तिगा मरदात अल्लाह। थोड़े दिन के लिए अपनी आदत बनाइए कि जो भी काम करें नेकी का, तो उसके साथ ही क्या कहें, ए अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए दे रही हूँ। आप दे रहे हैं, लेकिन अपने कानों को सुनवाइए कि ए अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए कर रही हूँ, मैं तेरी रजा के लिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपके दिल को भी यकीन आ जाएगा कि आपको किसी और को नहीं दिखाना, बल्कि अल्लाह ताला को ये काम दिखाना है। और फिर अगली बात क्या है कि याद कीजिए, आपके सर पे कुछ ज़कात तो नहीं रहती, कोई कफारा तो नहीं है आपके सर पे, कोई ऐसा दम जो किसी मौके पे आपके ऊपर हुआ और आपने नहीं दिया, तो अपने दिए लिए जो है सारे इनको आपने इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से पूरा करना है। हम कई दफ़ा भूल चुके होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर आपको मुझे याद दिला देता है। थोड़ी सी बात हिकमत की भी समझ लीजिए, क्योंकि जब गौर व फिक्र किया जाता है तो ये बात हमें और अच्छी तरह से समझ आ जाती है। और वो क्या है कि एक इंसान, दुनिया में जितनी भी नेमतें दिया गया है ना, उनमें से सबसे बड़ी हिकमत की दौलत है कुरान पाक का इल्म हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे उबूर हो। ऐसा बंदा दुनिया में किस तरह जीना है, किस इंसान को कहाँ रखना है, किसका कितना हक है, किससे कितना डरना है, किसको कितना डराना है, ये सब बहुत खूबसूरत तरीके से कर लेता है। और अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान को दुरुस्त कर देता है, उसकी ज़ुबान पे हक बात को जारी कर देता है। जिसको हिकमत मिलती है ना, उसको अल्लाह लफ चीज़ों से दूर कर देता है। बेकार रस्में अच्छी नहीं लगती, बेतुके लोग अच्छे नहीं लगते, खाम खा की महफिलें, खाना पीना, इतने लाख का जोड़ा मैं पहन लूँ, इतने हजार का जोड़ा मैं पहन लूँ, ये अक्ल आने लग जाती है। और जितना ज़्यादा इंसान इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनेज करता रहता है, अल्लाह ताला मज़ीद हिकमतों के दरवाजे उसके लिए खोलता रहता है। और अल्लाह ताला मुझे आपको हिकमत की दौलत से मालामाल कर दे।